ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संवैधानिक परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शिरकत के दौरान नेपाल की प्रतिष्ठा को आंच आने जैसा कोई काम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री केपी ओली का कथन। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में संसदीय छानबीन विशेष समिति ने प्रतिनिधि सभा में पेश किया प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को भेजने का संसदीय सचिवालय को सभामुख देवराज घिमरे ने किया निर्देश। संघीय संसद के चालू अधिवेशन का आज रात 12 बजे होगा अंत। और म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संवैधानिक परिषद की आज शाम को प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई बैठक ने प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत की सिफारिश की है। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ ही संवैधानिक परिषद के सदस्यों प्रधान न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज खिमरे, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख इंदिरा राणा और प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड उपस्थित थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि राष्ट्रसंघ की 79वीं महासभा में शिरकत के दौरान वे नेपाल की प्रतिष्ठा में आंच आने के हिसाब से कोई काम नहीं करेंगे। राष्ट्रसंघ की महासभा में नेपाल की ओर से उठाए जाने वाले विषयों में आज प्रतिनिधि सभा को बताते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रसंघ के मैनिफेस्टो का पालन करते हुए दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करने और दूसरों के हस्तक्षेप को स्वीकार भी न करने की नेपाल की नीति के बारे में स्पष्ट करेंगे। उन्होंने वैश्विक इकोसिस्टम, हिमालय के बचाव लगात वहां उठाए जाने वाले अन्य मुद्दों के बारे में भी सदन को स्पष्ट किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सहकारी संस्था की बचत रकम के दुरुपयोग संबंध में संसदीय छानबीन विशेष समिति ने प्रतिवेदन पेश किया। समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री ने प्रतिवेदन को पेश किया था। बैठक में सभामुख देवराज घिमरे ने सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में विशेष समिति के प्रतिवेदन 2081 को आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को भेजने का संघीय संसद सचिवालय को निर्देश किया। बता दें कि विशेष समिति ने गोरखा मीडिया के तत्कालीन प्रबंध निदेशक रवि लामिछाने सहित चार व्यक्तियों को प्रचलित कानून के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। उनमें अध्यक्ष गितेंद्र बाबू राय और सदस्य कुमार रमतेल, साथ ही तत्कालीन प्रबंध निदेशक रवि लामिछाने और संचालक छविलाल जोशी शामिल हैं। इस बात के जिक्र के साथ कि इन लोगों के कंपनी में बहाल रहने की अवधि में ही सहकारी से कंपनी में रकम आई थी, प्रतिवेदन में इन्हें जिम्मेदार बताते हुए प्रचलित कानून के मुताबिक इन पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। संघीय संसद के दोनों सदनों के चालू अधिवेशन आज रात 12 बजे से अंत हो रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सभामुख देवराज घिमरे और राष्ट्रीय सभा बैठक में अध्यक्ष नारायण दाहाल ने अधिवेशन का अंत आज रात 12 बजे करने के विषय में राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र पढ़कर सुनाया था। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा कुरुंग ने राष्ट्रीय सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 पेश किया। बैठक में उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की सदस्य सीता मिजार ने समिति का वार्षिक प्रतिवेदन 2081 पेश किया था। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र के सांसदों ने यह कहते हुए असंतुष्टि जताई कि संसद में माओवादी सशस्त्र आंदोलन को लेकर इस्तेमाल किया गया हिंसा शब्द परिवर्तन के लिए हुए आंदोलन को अपमानित करने के उद्देश्य से लाया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभा से संशोधन सहित वापस लाए गए सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक को संशोधन के लिए सहमति देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इससे पूर्व बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने मुस्लिम आयोग का आर्थिक वर्ष 2079-80 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया था। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की आगामी आश्विन 2 गते विश्वास मत लेंगे। कोशी प्रदेश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के नेतृत्व में मौजूदा कांग्रेस सहित की सरकार बनी है। बता दें कि संविधान की धारा 168(5) के मुताबिक मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए कार्की दूसरी बार विश्वास मत लेंगे। प्रदेश सभा की बैठक आश्विन 2 गते दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता समस्या समाधान के लिए अध्ययन समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय की नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा के प्रमुख टी क्रास पांडे के संयोजकत्व में आज 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। आगामी आश्विन 15 गते के भीतर अध्ययन प्रतिवेदन पेश करने की समयावधि समिति को दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार समिति को वर्तमान में नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने का कार्यादेश दिया गया है। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष के लिए करीब 31,62 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। आज की प्रदेश सभा बैठक में आर्थिक मामला मंत्री बहादुर सिंह थापा ने चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए कुल 31,62 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया। सरकार ने हवाई दुर्घटना जांच के लिए अधिकार संपन्न उच्चस्तरीय समिति बनाने की तैयारी की है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि अब तक हुई हवाई दुर्घटनाओं के लिए गठित जांच आयोग के प्रतिवेदन में उठाए गए सवालों के विषय में अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने की सरकार ने तैयारी की है। मंत्री पांडे ने बताया कि पुनरावेदन अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना के प्रवक्ता ज़ॉ मिन टुन ने रविवार को कहा 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 64 लोग लापता हैं। वहीं स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार मौतों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार म्यांमार में 3,20,000 से भी ज्यादा लोगों को अस्थायी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी है। यागी इस साल एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। म्यांमार से पहले यह तूफान वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और चीनी द्वीप हनियान में भी तबाही मचा चुका है। म्यांमार पहुंचने से पहले ही इस तूफान की वजह से 287 लोगों की जान जा चुकी थी। हालांकि वियतनाम पहुंचने के बाद इस तूफान के प्रभाव में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी वजह से दक्षिणी पूर्वी एशिया में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। म्यांमार के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस तूफान की वजह से शुक्रवार की शाम तक लगभग 66,000 घर तबाह हो गए। इसके अलावा लगभग 375 स्कूलों और एक बौद्ध विहार को भी नुकसान पहुंचा है। कई किलोमीटर तक की सड़कें बह गई हैं और कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार को 2,30,000 से भी ज्यादा लोगों को 187 राहत बचाव कैंपों में भेजा गया था। चीन के शंघाई के तटीय इलाके से बेबिन का तूफान टकराया है। चीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि यह पिछले 75 सालों में शंघाई से टकराने वाले सबसे भीषण तूफान है। इस तूफान की वजह से शंघाई में हजारों की तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चीन के मौसम विभाग ने बताया कि बेबिन का तूफान आज सुबह लगभग 7:30 बजे स्थानीय समयानुसार शंघाई के तटीय इलाके लिन गैंग से टकराया था। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि सावधानी के लिहाज से रविवार की शाम को ही लगभग 4,00,000 से भी ज्यादा लोगों को महानगर के इलाके से बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा चुनगामिंग जिले से भी 9,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। चुनगामिंग यांगसे नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप है और शंघाई का ही एक हिस्सा है। इस तूफान की वजह से चीन में सैकड़ों उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संवैधानिक परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में शिरकत के दौरान नेपाल की प्रतिष्ठा को आंच आने जैसा कोई काम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री ओली का कथन। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में संसदीय छानबीन विशेष समिति ने प्रतिनिधि सभा में पेश किया प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को भेजने का संसदीय सचिवालय को सभामुख देवराज खिमिरे ने किया निर्देश। संघीय संसद के चालू अधिवेशन का आज रात 12 बजे होगा अंत। और म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।